हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। भगवान बहुत सुंदर श्लोक इस बारे में इसमें बताएंगे और इसमें हमें मालूम चलेगा किस प्रकार से व्यक्ति अगर भगवान का सेवा करता है तो भगवान भी उसके अनुरूप उसको उसकी सेवा का प्रतिदान करते हैं। आइए देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये बहुत सुंदर है। इसका एसेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग इस श्लोक को इस प्रकार से समझाते हैं कि अगर आप कृष्ण को 5% देंगे तो कृष्ण भी आपको 5% देंगे। ये ऐसी बात नहीं है। भगवान अपनी शक्ति से अपने स्तर से प्रतिदान करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पूतना ने भगवान को मारने के लिए जहर देने का प्रयास किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी उसको जहर दे के मारने का प्रयास करें। भगवान ने उसको मारा जरूर, लेकिन मारने के बाद उसका सारा जहर जो उसके हृदय में भी था, क्रूरता का भाव, वो भी निचोड़ लिया और उसको शुद्ध करके अपनी माँ का स्थान बना दे दिया। क्योंकि उसके हृदय में एक इच्छा जरूर आई थी कि बच्चा बहुत सुंदर है और वाकई थोड़ा सा वात्सल्य भाव भी इसके हृदय में था, तो उसको ही भगवान ने देखा। भगवान के अंदर ये बहुत सुंदर गुण है कि वो हमारे दुर्गुणों को बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि हमारे अंदर कोई थोड़ा सा भी सद्गुण होता है तो उसको बहुत बढ़ा कर देखते हैं। थोड़ी सी भी हम सेवा करते हैं तो उसको बढ़ा करके देखते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। पहले ही लाइन को अगर आप सोचें, विचार करें, तो आप कहेंगे अरे हम तो नहीं समझते कि भौतिकतावादी लोग जो हैं वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस जगत में हम संबंध का अनुभव करते हैं, पत्नी होती है किसी के, बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, माता पिता होते हैं, उन सभी संबंधों से हमें कुछ रस प्राप्त होता है। लेकिन ये रस वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण का है आत्मा से, और जब तक भगवान श्री कृष्ण से इस संबंध की का खुलासा हमारे हृदय में नहीं हो जाता या हमारा संबंध वापस से पुनर्स्थापित नहीं हो जाता, तब तक बार बार अनेक अनेक जन्मों में हम इन संबंधों में वही रस ढूंढने का प्रयास करेंगे जो अंततोगत्व हमें कृष्ण से मिलता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी पहली लाइन में बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भौतिकतावादी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। ये थोड़ी गहरी बात है समझने के लिए। और इसी कारण से जो हमारी स्वरूपगत स्थिति है सेवक की, उसको हम यहाँ के लोगों में अभिनिविष्ट कर रहे हैं, पत्नी की सेवा करके, पति की सेवा करके, बच्चों की सेवा करके। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इस जगत के संबंधों को बिल्कुल भूल जाएं, लेकिन इस समझ में हमेशा याद रहना चाहिए कि यहाँ के जो संबंध हैं वो क्षणिक हैं। उनको उनकी प्राथमिकता देकर भगवान कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। हमें भगवान कृष्ण से अपने संबंध को प्राथमिकता देना चाहिए और इन संबंधों को कृष्ण से संबंध जोड़ करके देखना चाहिए। तो दूसरी डायन से प्रभुपाद समझा रहे बहुत अच्छी तरह से कि कुछ लोग ब्रह्म भगवान की ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, निराकार ज्योति की, तो उनको भगवान की निराकार ज्योति का साक्षात्कार होगा। कुछ लोग भगवान के परमात्मा स्वरूप जो कि कण कण में व्याप्त हैं उसके प्रति आसक्त होते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, योगी जन इत्यादि, तो उनको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लेकिन भगवान का साक्षात्कार इन तीनों से श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण आपको याद होगा, सूर्य का सूर्य के से निकलने वाली किरणें, उनका प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य में रहने वाले देवता विवस्वान। तो कोई व्यक्ति सूर्य किरणों में है तो भी सूर्य में है, अगर सूर्य के गोले को देख रहा है तब भी सूर्य का अध्ययन कर रहा है, और अगर सूर्य देवता से जाके बातचीत करता है तो भी सूर्य के संबंध में कार्य कर रहा है। लेकिन तीनों के स्तर में बहुत अंतर है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप लोग के मन में आ सकता है कि परमात्मा तो भगवान के ही अवतार हैं, ये भगवान के ही विस्तार है। तो परमात्मा साक्षात्कार और भगवान के साक्षात्कार में क्या अंतर है? परमात्मा केवल उपदृष्टा और अनुमंता के रूप में कार्य करते हैं, वो हमारी क्रियाओं को हमारी इच्छाओं को देखते हैं और यदि हमारे कर्मफल के अनुसार होता है तो उसको वो क्रियान्वित होने देते हैं अपनी शक्ति से, लेकिन कोई लीला नहीं करते हैं परमात्मा के रूप में। लेकिन भगवान अपने भक्तों से बड़ा सुंदर आदान प्रदान करते हैं, प्रेम करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं का रचना करते हैं, सुंदर संपादन करते हैं, रचना नहीं कहना चाहिए, संपादन करते हैं, जिससे भक्तों को असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्योंकि ब्रह्म परमात्मा ये भगवान का अंश है, इसलिए इसमें जो सुख मिलता है वो भी एक अंश ही होता है। ये बताया जाता है भक्ति शास्त्रों में कि भक्ति करके जितना जीव को सुख मिलता है वो एक सागर के समान है और जो ब्रह्मानंद है वो मात्र एक बूंद के समान है, और इस जगत में तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो व्यक्ति जिस अनुरूप में जिस अनुसार जिस साधन का प्रयोग करके भगवान का भजन करता है उसी के अनुसार उसी के फलस्वरूप भगवान उतनी मात्रा में उसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो यानी कोई व्यक्ति अगर ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म उपासना कर रहा है तो भगवान ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे, अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा पर ध्यान कर रहा है तो परमात्मा के रूप में अभिव्यक्त होंगे, और अगर भक्ति योग कर रहा है तो पूर्ण भगवान के रूप में प्रकट होंगे और भक्त को सुख देंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट हो सकते हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मवादी हैं या जो परमात्मवादी हैं उनसे भगवान उनसे आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन वो आदान प्रदान जो है वो भगवत आदान प्रदान से कम है। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है और दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों का समान को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। थोड़ा इसको समझना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में हर जीवात्मा शाश्वत रूप से भगवान से एक विशिष्ट प्रकार के संबंध से संबंधित है और हर जीवात्मा को यही लगता है कि मैं, या कह सकते हैं उसको अनुभव होता है कि मैं अपने संबंध में पूरी तरह से संतुष्ट हूं। भले ही वो अन्य भक्तों के प्रेम की प्रगाढ़ता को अनुभव करे और अप्रिशिएट करे, इसकी सराहना करे, फिर भी वो अपने संबंध से पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और भगवान भी ऐसा ही अनुभव हर जीवात्मा को कराते हैं कि वो सबसे अधिक प्रेम उससे ही करते हैं। ये अद्भुत भगवान का गुण है। आध्यात्मिक जगत में हर जीवात्मा को यही लगता है कि भगवान मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो इस कारण से वो अपनी परिस्थिति को कभी परिवर्तित नहीं करना चाहते। जो सहज या लोग हैं वो कहते हैं कि आप गोपी हैं या आप पीकॉक हैं, यानी कि आप मोर हैं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन इस तरह की भावना गलत है। ये जो भाव है भगवान के प्रति, ये साधना भक्ति के द्वारा जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप भगवान के प्रति उदित होगा। इसकी कल्पना करने की आवश्यकता हमको कतई नहीं है, हमें कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जब हरे कृष्ण मंत्र हम जप करते रहेंगे एक दिन भगवत कृपा से अपने आप ये भाव, जो भी हमारा भाव है भगवान के प्रति, वो उदित होने लगेगा। एक और एग्जाम्पल है कि जैसे कोई मणि है तो मणि एक होती है लेकिन वो अलग अलग रोशनियों के कारण अलग अलग प्रकार के रोशनियों को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब रिफ्लेक्ट को क्या बोलेंगे, वापस भेजती है। तो जिस जिस भाव से भगवान को भक्त पूजते हैं, प्रेमी के रूप में, दोस्त के रूप में, उस प्रकार से भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं। इससे भगवान को भी सुख मिलता है और भक्त को भी बहुत सुख मिलता है। तो यानी भक्त के भाव के अनुसार भगवान उसका उसे विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भौतिक जगत में भी ऐसी विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भक्ति के प्रभाव से, या अगर नहीं कहना चाहिए, जब भक्ति के प्रभाव से ये भाव हृदय में उदित हो जाता है तो व्यक्ति भगवत धाम में ना हो तो वो भी भगवान से इस प्रकार का आदान प्रदान का अनुभव वो इस जगत में कर सकता है। इतनी शक्तिशाली है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति। यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक जगत में भी इस अनुभव को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। थोड़ा समझिए इस बात को। श्लोक को हमने कई बार उद्धृत किया है, आरोह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रयः। कुछ निर्विशेषवादी ऐसे होते हैं, यह कह सकते हैं निर्विशेषवादी इसी प्रकार से होते हैं, इसकी चर्चा हमने पिछले श्लोक में करी थी, कि वो किसी से कोई संबंध नहीं चाहते क्योंकि इस जगत में संबंधों से उन्हें खटास मिली है, दुख मिला है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि अब क्या भगवान की सेवा करेंगे, बस भगवान के जो दिव्य तेज है, भगवान भी नहीं कह सकते, उन्हें खाली ब्रह्म के बारे में पता होता है, ब्रह्म में जाकर मैं लीन हो जाऊंगा और अपने अस्तित्व को मिटा दूंगा। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि आत्मा का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व वहां पर भी बना रहता है। श्री प्रभुपाद जी इस बारे में बड़ा सुंदर बताते हैं, कहते हैं अगर आप आत्म साक्षात्कार की बात करोगे तो अपना अस्तित्व कैसे नष्ट हो सकता है, साक्षात्कार तो किसी व्यक्ति को होगा। तो यदि आपको आत्म साक्षात्कार हो रहा है तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ मतलब है आपका अस्तित्व रहेगा, आपका अस्तित्व खत्म होने की बात होती ही नहीं है। लेकिन काफी समय तक, कई कई सृष्टियों तक जीवात्मा इस तरह से ब्रह्म ज्योति में रहती है, लेकिन कृष्ण का सुख, कृष्ण की सेवा का सुख ना मिल पाने के कारण उस सेवा की प्रवृत्ति के लिए फिर वापस इस भौतिक जगत में आ जाती है। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो लोगों को वैकुंठ में घुसने का मौका नहीं मिलता, उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्रीला प्रभुपाद इस बारे में अच्छा बोलते हैं कि बहुत से निर्विशेषवादी बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये ब्रह्म जो है वो सत्य है और ये जगत मिथ्या है, फिर भी इस मिथ्या जगत में बहुत सारे वो हॉस्पिटल खोलते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जीवात्मा से सेवा करने की प्रवृत्ति निकाली नहीं जा सकती है, अगर वो भगवान में निवेशित नहीं की जाएगी तो भौतिक जगत में निवेशित करनी ही पड़ेगी और वो होगी ही। तो इसलिए ऐसे निर्विशेषवादी जो है उनका जो स्थिति है वो स्टेबल नहीं है, वो स्थायित्व नहीं है, उसमें उन्हें भौतिक जगत में वापस करना पड़ता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपने यज्ञ करने की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग आदि प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी सिद्धि भी भगवान ही देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। तो जो योगी इत्यादि लोग होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, या इस प्रकार से योग अभ्यास करते हैं कि उनको सिद्धियां प्राप्त हों, तो वो सिद्धियां भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होती हैं, और कोई व्यक्ति सिद्धि देता नहीं है हमको इस संबंध में। ये चीज 11वें स्कंद में भी आता है, किस प्रकार से भगवान के एक रूप पे ध्यान करके व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। बहुत सुंदर बात है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। कोई ब्रह्म ज्योति में जाता है, असंतुष्ट रहता है, कुछ सुख मिलता है लेकिन असंतुष्ट रहता है। यह शुरुआत करें सकाम कर्मियों से, जो स्वर्ग इत्यादि जाते हैं वहां जाकर के भी वो असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वहां जाके वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति सोचता है इससे क्या सुख मिलेगा मेरे को, या मिला मेरे को सुख। ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी जीवात्मा संतुष्ट रहता है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, अहेतु की भक्ति के प्राप्त करते हैं, उससे ही आत्मा को सर्वोत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे वो वापस कभी भौतिक धरातल पर नहीं आता। क्या उसका प्रमाण है? तो इस प्रमाण को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही बताया गया है। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। कि वो परधर्म, वो भक्ति का धर्म जिसका आचरण करने से भगवान के चरणों में अहेतुकी यानी निष्काम भक्ति और अप्रत्यहता यानी कि किसी भी भौतिक परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना लगातार होने वाली भक्ति, अगर इस स्थिति को जीव प्राप्त कर लेता है तो ये नात्मा सुप्रसिद्धि, उसी से आत्मा को सुप्रसिद्धि मतलब बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। और जब हमें कहीं पर सुख प्राप्त होगा तो हम उस स्थिति को क्यों त्यागेंगे। तो यानी कि ये जो सारी स्थितियां हैं, ये स्थितियां प्राप्त करके यानी कि ब्रह्म में लीन होने के प्रयास करने के बाद, योग सिद्धि प्राप्त करने के बाद या स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा असंतुष्ट रहेगा और धीरे धीरे अपने चेतना के विकास के द्वारा उसको समझ में आएगा कि जब तक मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करता तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। तो ये सुख भक्तों को डायरेक्ट मिल जाता है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो सीधे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और इस बात को आगे के श्लोक में बताया गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। अकाम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त जो भगवान से कोई भौतिक आकांक्षा नहीं करते। भौतिक आकांक्षा का मतलब हो गया है भोग, योग सिद्धि और ब्रह्म सायुज्य, इन तीनों की इच्छा नहीं करते। सर्व काम का अर्थ आप समझ गए, भौतिक भोगों की अभिलाषा। मोक्ष काम का अर्थ होता है ब्रह्म में जाकर के, निराकार ब्रह्म में जाकर लीन हो जाना। तो इस प्रकार की कोई भी इच्छा वाला व्यक्ति हो वो बड़ी तीव्रता से भक्ति करता है। तीव्र भक्ति का अर्थ है और किसी देवता की पूजा नहीं करता और कोई साधन करने का प्रयास नहीं करता, वो सीधे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि चाहे कोई यज्ञ कर रहा है, चाहे वो योग कर रहा है, चाहे वो ज्ञान योग का ज्ञान का सहारा ले रहा है, जब तक उसमें भक्ति का सम्मिश्रण नहीं हो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भक्ति इन तीनों पर डिपेंडेंट नहीं है, ना तो अष्टांग योग पे, ना क्रियाकर्म इत्यादि पे, ना ज्ञान के ऊपर। भक्ति करने मात्र से व्यक्ति अपने आप प्रगति करता है। और यही बात मैं बता रहे हैं, तीव्रना भक्ति योगेन का अर्थ हो गया कि भक्ति में कोई सम्मिश्रण नहीं है कि अब वो कुछ ज्ञान का अनुशीलन करे या कुछ और पूजा पाठ करे, नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, सीधे भक्ति करे, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करे, तो चाहे उसकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं उदारधि, वो पूरी तरह निष्काम भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि अगर कोई सकामी भी है, बहुत इच्छा रखने वाला है, तो भी भगवान का ही भजन करे, क्योंकि अंततोगत्व भगवान उसको शुद्ध करके अपने चरणों की प्राप्ति कराते हैं। इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए और इससे हमको भी प्रेरणा मिलना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो चाहे हमारे हृदय में कितने भी भौतिक वासनाएं हैं, लेकिन अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान को हम पसंद पड़ते हैं और एक दिन भगवान हमारे हृदय की शुद्ध को शुद्ध करके हमको अपना प्रेम भी देंगे अपने चरणों का। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो इसको हमने समझाने का प्रयास किया। आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि इतना फायदा होने के बाद भी लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।